मेसी का दूसरा घर मेरा पहला प्यार, मैं फुटबॉल फैन हूँ, मेसी का प्रशंसक, इसीलिए बार्सिलोना मुझे पसंद है। लेकिन जब मैं शहर में पहुंचा तो मुझे फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के साथ एंटनी गाउडी की वास्तुकला, सी फ्रंट और सी फूड से प्यार हो गया। देवराज चौधरी आपको एक जगह और उसके लोग बाग से अपने मोहब्बत की दास्तां बता रहे हैं। छुट्टियां बिताने कहाँ जाएं? यह तय करते वक्त अक्सर लोगों के दिमाग में कई सवाल आते हैं। छुट्टियों में बहुत सारी एक्टिविटी हो या आराम से उनका मजा लिया जाए, क्या छुट्टियां शहर, बीच या पहाड़ों पर बिताई जाए? ऐतिहासिक महत्व वाली जगह पर घूमने जाया जाए या शॉपिंग, मनोरंजन पार्क को ध्यान में रखकर इसकी प्लानिंग हो? घूमने की योजना बनाते वक्त मुझे ये सवाल परेशान नहीं करते, मेरा मकसद बिल्कुल अलग होता है। फुटबॉल फैन होने के नाते मैं अक्सर ऐसी जगह छुट्टियां बिताना पसंद करता हूँ जहां मुझे फुटबॉल से जुड़ी कुछ एक्टिविटी करने को मिल जाए। इसी वजह से मैंने अपनी एक छुट्टी फुटबॉल के जादूगर लियोनल मेसी के घर बार्सिलोना में बिताने का फैसला किया। मेसी यूं तो अर्जेंटीना के हैं, लेकिन लगभग 20 साल से बार्सिलोना उनका दूसरा घर बना हुआ है। 180 साल पुराना बाजार, बार्सिलोना दुनिया में सबसे जीवंत, मजेदार, ऊर्जावान शहरों में से एक है। वहां हमेशा कुछ ना कुछ करने को होता है। अगर आप उन सबको पूरा करने लगे तो पूरी जिंदगी उसमें खर्च हो जाएगी, लेकिन टूरिस्ट एक शहर को देखने में पूरी जिंदगी तो नहीं लगा सकता। बार्सिलोना में मेरा होटल शहर के बीच में था और चेक इन करने के बाद मैं पैदल ही शहर को डिस्कवर करने निकल पड़ा। कुछ समय बाद मैं वहां की सबसे प्रसिद्ध सड़क ला राम्बला पहुंचा। यह कैटालोनिया प्लाजा से पोर्ट वेल्ले में क्रिस्टोफर कोलंबस स्मारक तक फैला एक शानदार एवेन्यू है जो हमेशा पैदल यात्रियों से भरा रहता है। चलते हुए मुझे कई न्यूज स्टैंड्स, कैफे, रेस्टोरेंट, फल फूल और सुवेनियर बेचने वाले कियोस्क दिखे। साथ ही सुंदर वास्तुकला की बेहतरीन इमारतें भी दिखीं, जिनमें 1847 में शुरू हुआ बार्सिलोना का ओपरा हाउस और 1840 से अब तक चल रहा मशहूर ला बुकेरिया मार्केट भी था। ला राम्बला का सबसे दिलचस्प पहलू इसका रहस्य है। इस सड़क से कई गलियां जुड़ती हैं। लगभग हर गली में जाकर आपको कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। इन्हीं में से बाईं ओर एक गली पकड़कर मैं पहुंच गया पेरिगॉटिक, जिसे गॉथिक क्वार्टर भी बुलाया जाता है। पुराने शहर के केंद्र में स्थित गॉथिक क्वार्टर में रोमन काल से 20वीं शताब्दी तक की इमारतें एक साथ दिखती हैं। इस इलाके के बीचों बीच है बार्सिलोना कैथेड्रल, जो 13वीं और 15वीं शताब्दी के बीच बना था। लेकिन मेरे लिए इस इलाके की असली सुंदरता इसकी दिलचस्प संकरी गलियां और गली मोहल्लों में थी। इन गलियों में भटकते हुए मुझे अपने यहाँ की भूल भुलैया की याद आ रही थी। घूमते घूमते लंच का वक्त हो गया था और मैं बढ़ चला बार्सिलोना के सी फ्रंट की ओर, जहाँ शहर के कई बेहतरीन सी फूड रेस्टोरेंट हैं। यहाँ मैंने आनंद लिया पाया का, जो स्पेनिश डिश है। इसमें चावल के साथ अलग तरह के सी फूड, सॉसेज और पोटैटो चिकन शामिल होते हैं। दुनिया भर से इस तीर्थ यात्रा पर आते हैं लोग। 1992 के ओलंपिक गेम्स के बाद बार्सिलोना के सी फ्रंट की काया पलट हुई। यह अद्भुत जगह है जहां आपको आधुनिक वास्तुकला देखने को मिलती है। शाम की सैर मैंने यहीं समुद्र के किनारे की। बार्सिलोना नाइट लाइफ के सबसे प्रसिद्ध नाइट क्लबों में से कुछ यहाँ हैं, जो समुद्र तट से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित हैं। लेकिन नाइट क्लब की जगह मैंने अपने होटल का रुख किया, क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह FC बार्सिलोना का शानदार स्टेडियम कैंप नू देखने जाना था। ये शहर के मुख्य इलाके से दूर है, इसीलिए दूसरे दिन स्टेडियम तक पहुंचने के लिए मैंने मेट्रो लेने का फैसला किया। लगभग आधे घंटे के आरामदायक सफर के बाद मैं मेट्रो से उतरकर स्टेडियम की तरफ पैदल चलने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, एक विशाल काय ढांचा आकार ले रहा था। स्टेडियम परिसर में दाखिल होने के बाद मुझे लगा कि इस फुटबॉल क्लब की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता कितनी अधिक है। मेरे जैसे दुनिया के अलग अलग कोनों से फैंस फुटबॉल की इस तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे। कैंप नू स्टेडियम का टूर वाकई में अनोखा अनुभव था। मैंने शुरुआत म्यूजियम से की, जहां क्लब के इतिहास को बेहद अच्छे ढंग से संरक्षित किया गया है। साथ ही सभी ट्रॉफियां और यादगार वस्तुएं भी रखी गई थीं। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, लॉकर रूम, कमेंट्री रूम देखने के अलावा फुटबॉल पिच तक भी जाने का मौका मिला। FC बार्सिलोना का सिद्धांत मोटो है, यानी मोर देन अ क्लब, और इस टूर से यह साफ हो गया कि यह क्लब कैटलन लोगों का प्रतीक है। 94 साल से गाउडी के चर्च पर चल रहा है काम। जितना बार्सिलोना मेसी का शहर है, उतना ही वह स्पेनिश आर्किटेक्ट एंटनी गाउडी का भी। 19वीं शताब्दी के अंत में गाउडी के डिजाइनों ने बार्सिलोना को एक ऐसे शहर में बदल दिया जो दुनिया में बिल्कुल अनोखा था। बार्सिलोना वाले अक्सर कहते हैं कि शहर की सड़कों पर चलते वक्त आप लगभग हर जगह गाउडी की छाप देख सकते हैं। कैंप नू को देखने के बाद मैं सगार्दा फैमिलिया पहुंचा, जिसे गाउडी का मास्टरपीस कहा जाता है। सगार्दा फैमिलिया कहने को तो एक रोमन कैथोलिक चर्च है, लेकिन गाउडी की नायाब कल्पना ने इसे अविश्वसनीय शक्ल दी है। 1883 में गाउडी ने इस चर्च को बनाने का भार संभाला था, लेकिन 1926 में उनकी अचानक मौत हो गई। गाउडी की मौत के 94 साल बाद भी इस चर्च को पूरा करने का काम जारी है। उम्मीद है कि 2022 तक यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चर्च में गाउडी के काम की डिटेल देखकर मैं स्तब्ध रह गया। बेसिलिका में गुजारा गया वक्त मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। रंगीन कांच की खिड़कियों से जो रोशनी उसके अंदर झांक रही थी, उसने बेसिलिका को कल्पना लोक में बदल दिया था। वास्तुकला की इस नायाब मिसाल को देखने के बाद गाउडी के काम में मेरी दिलचस्पी काफी बढ़ गई थी। अब मैं उनके एक और मास्टरपीस को देखने निकल पड़ा। यह गाउडी का ही करिश्मा था कि उन्होंने एक पार्क को बार्सिलोना का लैंडमार्क बना दिया, जिसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट का दर्जा भी हासिल है। इसे पार्क गोएल के नाम से जाना जाता है। गाउडी के चर्च को देखते हुए मेरे मन में यह ख्याल आया था कि उन्होंने एक पार्क को कैसे डिजाइन किया होगा, लेकिन पार्क गोएल में आने पर मुझे निराशा नहीं हुई। इसे देखते हुए लगा कि उन्होंने कुदरत को पार्क की वास्तुकला का हिस्सा बना दिया है। गाउडी ने पार्क को इस तरह से डिजाइन किया है कि यह बार्सिलोना का विस्तार लगता है। इस पार्क में एक छोटी सी पहाड़ी है जहां से शहर का नीला आकाश और समुद्र का सर्वश्रेष्ठ मनोरम दृश्य दिखता है। मैंने इस पहाड़ी के शिखर से उस शानदार दृश्य का आनंद लिया। सूरज ढल चुका था, शहर में मेरा वक्त खत्म होने को था। मैं यहाँ बार्सिलोना फुटबॉल क्लब का शानदार स्टेडियम देखने आया था। मन में किसी कोने में यह उम्मीद भी थी कि शायद मेसी की एक झलक दिख जाए, लेकिन ट्रिप खत्म होने तक इस शहर को सिर्फ एक फुटबॉल प्रेमी की नज़र से देखने का मेरा नज़रिया बदल गया था। मुझे इस शहर से प्यार हो गया था।